प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान ऋतुदास जी महाराज द्वारा विषय भक्ति की राह अगस्त 2016 में यमुना विहार में दिया गया है।
भक्ति की राह में परीक्षाएं ज्यादा क्यों आती
है? परीक्षाएं तो नहीं आती, लेकिन हमने ये समझ लिया है कि ये भौतिक संसार ही हमारा है। हमने ये समझ लिया है कि ये भौतिक शरीर ही हम हैं, इसीलिए परेशानी आती है। परेशानी क्यों आती है? हमने क्या समझ लिया? मैं ये शरीर हूँ, मेरे शरीर के संबंधी है, मेरा एक घर है, मेरा बिजनेस है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा, हमने इन सबों के साथ हमारी पहचान बना ली कि मैं ये हूँ। झूठी पहचान, झूठ को स्वीकार कर लिया, शरीर झूठ है, 100 साल में खत्म, इसलिए झूठ है। झूठ का मतलब है टेम्पररी, क्षणिक, अर्थात तो इसलिए परेशानी आती है। उदाहरण लेते हैं प्रहलाद महाराज का, उनको क्या परेशानी नहीं आई? पिताजी ने उनको बड़े पर्वत से सागर में उनको फेंक दिया, भगवान ने उनको बचा लिया, हाथी के पांव के लिए कुचल दिया, बच गए, जहर पिलाया, बच गए, सांप के गड्ढे में उनको फेंका, और कुछ नहीं, सांप है और गड्ढा है, ऊपर जा नहीं सकता, तो प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी से फेंक दिया। क्या क्या नहीं किया, लेकिन प्रहलाद महाराज भक्ति में स्थित रहे, न उनको कोई परेशानी थी, न उनको कोई दुख था, न उनको कोई प्रकार की परेशानी उनको नहीं आई, मीरा को भी नहीं आई। मीरा अभी आधुनिक भक्त है, आपने सुना है घर से निकाला, राणा मर गया, उनका हस्बैंड मर गया, तो उनका देवर उनको चाहता था, और घर की पटरानी है, घर से बाहर न निकले, भगवान का भजन छोड़े, क्या नहीं किया, जहर भी पिलाया, लेकिन मीरा मगन होके जहर पी गई, और बोलती है करना फकीरी और दिल गेरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन गादी, कोई दिन तकिया, कोई दिन भोय पे सोना जी। प्रभुपाद जी को क्या परेशानी नहीं हुई? उनकी पत्नी ने उनका भागवत बेच दिया, और क्या क्या पैच वाले धोती पहनते थे, इतनी बड़ा पैच सिलाई करके, पैसा है नहीं, 8 डॉलर में अमेरिका तक की पहुंच, और वहां जाके कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, परेशानी। लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे परेशानी हुई, ना हम कह रहे हैं कि हमें परेशानी हो रही है।
भक्ति में जो
भक्ति में जिनको परेशानी आती है, तो उनका मतलब ये है कि वो कच्चा है। उनका मतलब क्या है भक्ति में वो, और भक्ति के बिना आपको सुख, आनंद, ब्लिस नहीं मिल सकता, संतुष्ट नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। आप कुछ भी करो, करोड़ पत्नियां, करोड़ हस्बैंड हो, खरबाजों में रुपयों का बैंक बैलेंस हो, फिर भी ज्यादा परेशानी आएगी। ये भौतिक संसार में भौतिक परेशानियों की कोई कमी नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वहां से फिलोसॉफी शुरू होती है, भक्ति वहां से शुरू होती है कि यह संसार दुखदायी ही है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इनको ज्ञान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यह संसार दुखदायी है, चाहे आप कुछ भी कर लो। आप बताइए कि यह संसार में आप क्या करोगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का सुख ना है, हमें दुख ना है, सुख भी ना है, सुख तो इलिजरी है, सुख भी भौतिक संसार का सुख सुख नहीं है। तो ये बताइए कि आपको एक चीज बताओ जो करने से आपको भौतिक दुख ना है, एक चीज बताओ, वो एक चीज है भक्ति कृष्ण की, और ओनली कृष्ण की, और वो ही हेतु की अप्रति होता, दो कंडीशन लगाई गया सुत गोस्वामी ने, वो भक्ति कृष्ण की कैसी होनी चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्ट, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, हेतु के कोई भी प्रकार के हेतु के बिना, और सतत अप्रतिहता का अर्थ है तेल धारा व्रत, हमेश हमेश भक्ति करोगे तो कुछ आएगा, वो भी एब्सोल्यूट दिव्य बन जाएगा। तो यहाँ से फिलोसॉफी शुरू होती है, ये भौतिक संसार दुखदायी है ऐसा समझ, वहां से हर तत्व ज्ञान शुरू होता है। कौन कहेगा इधर की भौतिक संसार सुखदायी ही है, दुखदायी नहीं, कौन कहेगा? तो भक्ति में जो विटामिनाएं आती है वो टेस्ट है, ऐसा हम कहते हैं, वो हमारा टेस्ट है, वैसे आनी नहीं चाहिए। भूख इसलिए आते हैं कि हम भक्ति में कितने स्थित हैं, कितने ऊपर उठ चुके हैं, प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद, ध्रुव महाराज, अर्जुन, अपने को मारना, अपनों को मारना, कितना बड़ा दुख, इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, जिनने हमें पैदा किया उनको मारना, भीष्मदेव और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य वगैरह, तो ये दुख नहीं है। दुख क्या है, रियल दुख क्या है, कि भगवान भक्त भक्ति भगवान ये तीनों से हमारा विरह होना, हमारा बिच्छेद होना, हमें हम अलग होना, ये सबसे बड़ा दुख है। यहाँ बैठे सब भक्त की गोदी में पल जाएंगे, लेकिन ये दुनिया की गोदी में नहीं पल सकते हैं। भक्त की प्रभुपाद की गोदी में हम फले फूले हैं और फले फूले रहेंगे, लेकिन हस्बैंड पत्नी पति बड़े बच्चे देश इंश्योरेंसेस उनकी गोदी में आप सुखी नहीं हो सकते, हो सकते हैं लेकिन भौतिक, अगर वो भक्त हैं तो आध्यात्मिक सुख भी मिल जाएगा, तो सही सुख मिलेगा। तो ये बात है कि भक्ति में बाधाएं क्यों आती हैं, हमारे भक्ति का टेस्ट लेना, और जब हम भक्ति में उत्तीर्ण हो जाते हैं, टेस्ट में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो भक्ति में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं। वैसे कोई दुख भक्ति में है नहीं, कोई भी भक्त, किसी भक्त ने हमें कहा कि भक्ति में दुख है, कोई भी भक्त ने कहा ऐसा कि भक्ति में दुख है, लेकिन संसार में दुख है सबों ने कहा कि संसार नानक दुखिया सुखी सोई, उनने बता भी दिया, नानक देव ने बता भी दिया कि कहाँ सुख है, जो हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16-24 घंटा करता है वो सुखी, ये आत्मा संप्रसिद्ध थी वो सुख। तो मैं ज्यादातर ये हर एक सवाल पे 4-4 घंटा उनका समझौता दे सकते हैं, लेकिन कट शॉर्ट, क्योंकि नेक्स्ट
भक्ति की राह
में
भटक क्यों जाते हैं,
भटक क्यों जाते हैं, क्यों फिक्स नहीं है। तो सब जवाबों का ये एक सवाल है, सवालों का जवाब क्या है, भौतिक जगत संसार दुखदायी है और भगवान की भक्ति ही सुखदायी है, और हम आत्मा है, हमें भौतिक शरीर भौतिक संसार भौतिक घर भौतिक सब कुछ नहीं है। तो सब सवालों का जवाब क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैंने ये जवाब दिया था ना, मैंने पहले सबसे पहला वाक्य ये जवाब ये सवाल पहला सवाल का जवाब देते वक्त मैंने सबसे पहला वाक्य का प्रयोग किया था, ये अगर आप आत्मा हो तो दुख कहाँ है, कहाँ से आएगा, आत्मा तो सत चित आनंद है, आनंद में अभ्याशात आत्मा आनंद में है, उनको दुख कहाँ से आए, लेकिन आत्मा ने अपनी पहचान बदल दी, सच्चिदानंद नहीं, मैं सनातन नहीं हूँ, मैं असत हूँ, ये शरीर असत है, असत का अर्थ है टेम्पररी का अर्थ है नाश्वर है, हाँ तुमने क्या बोला, नाश्वर शरीर नाश्वर है, ये संसार भी नाश्वर, नाश्वर का अर्थ है क्षणिक टेम्पररी, नाश्वर नाश्वंत का अर्थ क्या है टेम्पररी, किसी चीज का नाश नहीं होता क्योंकि भगवान में से आता है सब चीज, जो भी चीज भगवान से आती है उनका नाश नहीं होता, लेकिन टेम्पररी होता है, ये शरीर 100 साल तक चलेगा, बाद में हम बोलते हैं नाशवंत, नाशवंत का अंत क्या है, नाशवंत क्या अर्थ क्या है कि पृथ्वी में मिलेगी जल तेज वायु आकाश पांचों मिल जाएंगे, तो मिल जाने का अर्थ नष्ट नहीं हुआ लेकिन क्षणिक, ये शरीर क्षणिक है। भगवान की शक्ति नाश नहीं पा, नाश नहीं होता, माया का नाश नहीं होता। माया का नाश करने में एक ही उपाय है, वो है भक्ति। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। तो सब सवालों का जवाब क्या है? मैं आत्मा हूँ। सब सवालों का जवाब एक है कि मैं आनंदमय हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शिवोहम शिवोहम, मैं शुभ हूँ, मैं सनातन हूँ। तो क्या सवाल था दूसरा? भटकते क्यों है? क्योंकि हम फिक्स नहीं किया कि मैं आत्मा हूँ, तो इसलिए हम भटकते हैं। अगर आपने फिक्स किया मैं आत्मा हूँ, तुरंत आपको फिक्स करना पड़ेगा मैं किसका अंश हूँ। भगवान कौन है? कि इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, भगवान बृहस्पति है, सरस्वती। भगवान कौन है? भगवान एक है, वह कृष्ण। दूसरे उनके अवतार जरूर है, नारायण विष्णु राम वगैरह उनके अवतार है, ठीक है, उनकी भक्ति भी सही है, लेकिन भगवान है एकलो ईश्वर कृष्ण। आर सब भृत्य, आर इच्छाए नाचिया भाई तारे करे नृत्य। सब देवी देवता है, भगवान कृष्ण के इशारे नृत्य कर रहे हैं, इशारे चल रहे हैं। भक्ति में से हम भटकते क्यों हैं? कि हम समझ रहे मैं शरीर हूँ, और आत्मा अगर समझ रहे तो किसके अंश है? किसके अंश है? माता पिता के, देवी देवता के, केवल कृष्ण, केवल केवल कृष्ण के। तो केवल कृष्ण का मैं भक्त, मैं अंश हूँ, तो जब तक उनकी गोदी में नहीं बैठूंगा तब तक मुझे तो कैसे भटकोगे लटकोगे? बच्चा है, अगर छोटा बच्चा रोएगा तो उनको आया जाके बोतल दो या अपना खुद का दूध दे, जो भी करे, लेकिन जब तक बच्चा अपनी माता की गोदी में नहीं आएगा तब तक उनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बच्चा उनका अंश है, उनका ही अंश है, आया का अंश नहीं है, किसी और का अंश नहीं, इसलिए माता की गोदी में ही उनको। तो आप आत्मा हो, कृष्ण के अंश हो, तो दूसरी गोदी में बैठोगे तो आनंद आएगा? बस ये पांच स्टेप सब सवालों का जवाब है। तो आप उनके अंश हो, उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। उनकी सबसे सरल सेवा और सर्वोत्तम सेवा क्या है? हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो ये सेवा करोगे तो उनका प्रेम पाओगे, कृष्ण का प्रेम मिलेगा। कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ता प्रेम करेगा, है ना? और कृष्ण की सेवा करोगे तो वो प्रेम ही हमारे हो गए। बाद में भटकना कहा, लटकना कहा भटकोगे? मिट्टी का बॉल जितना भी आकाश में डाल फेंकना है फेंको, मिलना ही पड़ेगा वहां। पृथ्वी को मिलेगा तो आने, समुद्र की लहर जितनी भी चाहे आकाश में उड़े, लेकिन आखिरी में समुद्र की गोदी में आना ही पड़ेगा, तभी शांति होगी। हम कौन है? जहाँ भी भटकना है, लटकना है, ऊंचे जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट राइट जाना है, भटको लटको जो करना है करो, लेकिन आखिरी में कृष्ण की गोदी में आना ही पड़ेगा, तभी संतुष्टि होगी, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। तो भटकना क्यों? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, शरीर समझ रहे हैं, शरीर का सुख सब जगह ढूंढने जा रहे हैं, देवी देवताओं को पूजने जा रहे हैं, शनि आ रहा है और बृहस्पति आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं और चंद्र आ रहे हैं और वरुण आ रहे हैं और अग्नि आ रहे हैं और माता पिता आ रहे हैं, देश आ रहा है, जिसका हम अंश नहीं है, उनके उनके वहां भटकोगे, कहीं बाबा आ रहा है, वो बापा, वो बापू, वो बाबा, वो गुरु, वो देव, ये देव, भटको लटको जहां भी जाना है जाओ। जब तक कृष्ण के पास नहीं आओगे तब तक हमारा काम, क्योंकि हम किसके अंश हैं? कृष्ण के ही।
नए को भक्ति सिखानी हो तो कहाँ से स्टार्ट करें?
तो ये पांच स्टेप हैं। पहले तो उनको कुछ न कुछ नाम देना पड़ेगा, तो नाम अगर नहीं ले रहे हैं, यही स्टेप है। आप आत्मा हो, उनको कहना पड़ेगा, कहोगे तो मानेंगे नहीं, लेकिन मैं आता हूँ, जो आपका सवाल है वह आता हूँ, कहना आत्मा हो इसलिए कृष्ण के अंश हो, इसलिए कृष्ण की सेवा करनी पड़ेगी, कृष्ण की सेवा हरिनाम, तो सेवा करोगे हरिनाम से तो प्रेम होगा, तो आपको संतुष्टि, प्रेम कृष्ण से, प्रेम कृष्ण आपसे, प्रेम, तो सब कुछ हो गया। तो वो तो करेंगे नहीं, पहले न माला करेंगे न मानेंगे, तो उसको प्रसाद खिलाना होगा। हम जितना हो सके घर में कीर्तन वाजिंत्र पर एमपी3 टेप रिकॉर्डर पर कीर्तन चलाए, जाने अनजाने में सुनते रहे, प्रसाद खिलाते रहे, जाने अनजाने में वो प्रसाद खाते रहे, या तो चलो मुझे यहाँ छोड़ दो, हस्बैंड हो तो कोई ससुर हो, मंदिर छोड़ दो, सत्संग छोड़ दो, अरे थोड़ा दर्शन तो कर लो, इधर तक तो आ गए। तो दिस आर ट्रिक, प्रसाद खिलाना ट्रिक, हरिनाम सुनाना ट्रिक, मंदिर ले जाना कुछ बहाने ट्रिक, अरे उत्सव इतना बड़ा हो रहा है 5 मिनट मुझे वहां ड्रॉप तो कर दो, ड्रॉप करने आए थोड़ा पार्क करके 5 मिनट दर्शन करके जाओ। अगर पति है पत्नी है, अगर कोई है दूसरा, तो ऐसे ट्रिक, यू हैव टू ट्रिक द अज्ञा, उनको बोलते हैं अज्ञात सुकृति, और आगे जाके हम उनको भक्ति उन्मुख सुकृति देंगे, जैसे कि उनसे दान करवा दो, भगवत गीता का दान कर दो, भगवत गीता बांटेंगे तो आपका दान हो गया, तो उनको अज्ञात सुकृति भक्ति उन्मुख सुकृति उनको दिलवा सकते हैं, उनके हाथ से भगवत गीता का दान करवाते हैं, उनके हाथ से प्रसाद का, अरे आप भंडारा है आप प्रसाद तो बांट दो, इतनी सेवा तो कर दो, इतनी सेवा तो कर सकते हो, प्रसाद तो बांट सकते हो, तो अभी जन्माष्टमी आ रही है तो आपकी सेवा है प्रसाद बांट, कुछ भी नहीं माने कुछ भी नहीं करे, जन सेवा तो कर लो, या जूतों की सेवा कर लो, भक्तों के जूते हाथ में रखेंगे जूते, अरे इतनी बड़ी भक्ति हो गई है ना, उनका भक्तों की रज उनके ऊपर पड़ेगी और भक्तों के दर्शन होंगे भक्तों के जूते हाथ में, ये सिख लोग सबसे बड़ी सेवाएं करते हैं, जूतों की सेवा बहुत अच्छी सेवा करते हैं भक्तों के। तो ऐसे अज्ञात अज्ञानता से जिनमें उनको दिलचस्पी है वो कृष्ण से जोड़ दो, वट एवर दिलचस्पी, उनको क्या दिलचस्पी है, जिनकी आप सोच रहे हो उनको किसमें दिलचस्पी है, हियरिंग, तो कुछ भी है हियरिंग चलते चलाते रखो हियरिंग, जन्माष्टमी हो रही है चलो सुनो कीर्तन सुनो ये सुनो, तो ऐसे हमें उनको क्या अच्छा लगता है उसके मुताबिक उनको जोड़ना, तो हो जाएगा काम। भक्ति के बाद भी
नेचर क्यों चेंज होती है,
क्योंकि भक्ति पक्कन पक्के नहीं हुई, शुद्ध भक्त के लक्षण चेंज नहीं होते, शुद्ध भक्त के लक्षण एक ही होते, सब शुद्ध भक्तों का सबसे बड़ा लक्षण है हमेशा श्री कृष्ण में ही उनका चिंतन, और कृष्ण के सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य कदाचन इति विधि निषेधयो रतेव किंकर, ये सब विधि निषेधों का राजा है, कौन सा, हमेशा कृष्ण का ध्यान करना, हमेशा कृष्ण को याद करना और उनका विस्मरण कभी न करना। तो आपका सवाल क्या है, स्वभाव क्यों नहीं चल, क्योंकि भक्ति में परिपक्व नहीं हुए,
कैसे होंगे क्या करें इसके लिए,
माल पहले तो गुरु, सब सवालों का जवाब सबसे पहला जवाब यह है कि गुरु बनाओ, चाहे आप माला न करते हो कुछ भी ना करते हो, पहले गुरु फिक्स करो, अगर गुरु आपको आश्रय दे, लेकिन लेना पड़ेगा आश्रय, गुरु देगा नहीं जब तक मांगोगे नहीं, आपको मांगना होगा कि मुझे आश्रय दो, तो गुरु गुरु का आश्रय, इसलिए रूप गोस्वामी के आदव, आदव का अर्थ क्या है, आदव मतलब शुरुआत, आदव गुरु पाद आश्रय, शुरुआत में गुरु के चरणों का आश्रय लो, ये सबसे पहली भक्ति है। सबसे पहली भक्ति क्या है, 64 भक्ति में, साधना भक्ति में सबसे पहली भक्ति है गुरु के चरणों का आश्रय लो, आदो गुरु पाद आश्रय, आचार्य आचार्य उपासना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, आचार्य गुरु आचार्य उपासना, उप आसन जाना, उपास उपासना मीन्स जाना, उपासना करना मीन्स भगवान की उपासना करना मीन्स भगवान के पास जाना, आचार्य उपासना सबसे पहला, गुरु फिक्स करो जो आपको अच्छा लगे,
कैसे पता चले कि ये गुरु जी अपनाने लायक हैं या कैसे, इनको तो एक
जहाँ जो गुरु में आप के अंदर श्रद्धा पैदा होती हो, जो गुरु जहाँ आपका मनोमय चक्र शांत हो जाए कि ये बस ये मेरे, वहाँ आपका मन शांत हो जाएगा।
पास जाने से जैसे हमारा मन भटक रहा है या कुछ जो भी है, शांति मिलती है।
लेकिन तो दूसरे कई पैरामीटर्स हैं, पहला ये है। दूसरा पैरामीटर है वो भगवान श्री कृष्ण का वैष्णव भक्त होना चाहिए, परंपरा में होना चाहिए, ये दूसरी क्वालिफिकेशन। इस्कॉन में सब गुरु चेक, सब गुरु ऑथोराइज्ड, हर गुरु के ऊपर नजर रहती है, उनका सब कुछ पब्लिक, सब कुछ, उनका जीवन पब्लिक, उनका बेडरूम पब्लिक, उनका घर पब्लिक, उनका खान पान पब्लिक, उनका आना जाना पब्लिक, उनका सब कुछ बैंक बैलेंस पब्लिक, सब कुछ पब्लिक।
जब गुरु की बात आती है ना, तो घर में लोग हैं, जैसे आजकल गुरुओं के बारे में काफी सुनाई देता है, ये बापू जेल में पड़े हैं या वो, नाम ही लेना चाहूंगी, तो घर के जो सदस्य हैं या हमारे पिताजी हैं या कोई भी बड़े हैं, वो सब कहते हैं कि इन चक्रों में ये सब पड़े हुए लोग या ये सब, तो वो पीछे खींचते हैं।
देखो शास्त्र बड़े या आपके बुजुर्ग बड़े, बड़े तो शास्त्र में, शास्त्र के आदव गुरु पद आश्रय आचार्य आचार्य उपासनम, और आपके बुजुर्गों ने भी सुना, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना गति नहीं, बुजुर्गों ने सुना है ना पहले। तो देखो एक दो बापू अगर जेल में चले जाए, उसका मतलब ये नहीं है कि शास्त्र गलत है, भगवान गलत है, ये सब भक्त गलत है। कई बापू जेल में गए और जाएंगे, कई रावण पैदा हुए, तो रावण भी गुरु बन के आया था सीता का, और सीता का हरण क्या बुरी नजर से ले गया, तो ये बापू भी, कोई बापा भी और गुरु भी और कहीं आएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं अभी तो भविष्य में ऐसे बापू बाप ऐसे जेल में बापू जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा ही रहता होता रहेगा। उसका मतलब भगवान का नाम सत्य नहीं है, नहीं भगवान सत्य नहीं है, वो नहीं शास्त्र सत्य नहीं है, वो नहीं। ओके शॉर्ट में कहता हूँ पूर्ण भक्ति की सीमा क्या है। पूर्ण भक्ति की सीमा ये है, जेल में जाने तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुरंत। और कितने कितने लोगों की नजर उनके इस्कॉन के गुरुओं पर, गुरुओं पर कितने लोगों की होती है, लाखों की, उसमें जीबीसी बॉडी और उनके डिसाइपल और उनके सारी इंस्टीट्यूशन, सारा समाज। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस्कॉन के गुरु का फॉल डाउन नहीं होता, होता, लेकिन जब तक वो अच्छी स्टैंडिंग में है और जब तक उनकी सबकी नजर उनके ऊपर है, तब तक तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल रहा है ना, तो हमारा कल्याण तो हो जाएगा, हमारा कल्याण तो हो जाएगा। आया अगर आगे फ्यूचर में आ भी सकता है, मैं गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन चेक तुरंत पकड़ा जाएगा, दो घंटा या ज्यादा से ज्यादा एक दिन में उनका बाहर फोकल उनका बाहर आ जाएगा। एक एक दिन में तो बहुत काफी समय हो गया, इतना टाइट चेक एंड बैलेंस इस्कॉन में गुरुओं पर रहता है। इसलिए इस्कॉन के गुरुओं गुरु बनाने के लिए हमें कोई भी प्रकार का डाउट रखने की जरूरत नहीं है। अंधा होके उनके चरण पकड़ लो, अंधा होके आश्रय ले लो, चरण पकड़ना मतलब उनका आश्रय ले लो, तो आपका जवाब मिल गया कि और कोई सवाल है। और ये क्यों नहीं बनाने देते,
प्रभुपाद बोलते हैं कि वो हमें उंगली पकड़ के कृष्णा के पास ले जाते हैं और वो चश्मा का काम करते हैं, जैसे हमें क्लियर नहीं दिखता ना, तो गुरु आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप ये रॉन्ग कर रहे हो, जब तक सेंटर नहीं लेंगे तब तक नहीं,
जब तक आप कनेक्शन नहीं करोगे तब तक बिजली कहाँ से आएगी। ऐसा नहीं कि 16 माला कर लें और एक साल तक करें और चार नियम का फॉलो, ये करें वो करें तब हम कनेक्शन करें, वो तो विधि है, वो दैट इज फॉर्मेलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वो इनिशिएशन ये विधि है। गुरु गुरु का आश्रय लेना वो विधि नहीं है, और वो कहीं कभी भी ध्रुव महाराज ने इतनी उम्र से जंगल में जाते हुए गुरु का आश्रय ले लिया। प्रहलाद महाराज ने यहाँ लिया, कहाँ लिया?
गर्भ
में लिया। तो क्या सोलह माला करते थे गर्भ में? तो आश्रय तुरंत ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जर्नी शुरू हो जाए, हमारा हाथ पकड़ के कोई दिखाए रास्ता, वो शुरू हो जाए। इसलिए आदो गुरु पाद आश्रय।
पूर्ण भक्ति की सीमा,
पूर्ण भक्ति की सीमा ये है। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा ये सवाल कि पूर्ण भक्ति की सीमा कहाँ है, तो वर्णाश्रम, हस्बैंड वाइफ, दिस दैट, ज्ञान मिश्रा भक्ति और कर्म मिश्रा भक्ति और देवी देवताओं की भक्ति या संसार की भक्ति या वर्णाश्रम, पति पत्नी की भक्ति वगैरह कई कई चीजें आई। बाद में भक्ति की बात आई तो शुद्ध भक्ति की बात आई, तो शुद्ध भक्ति हाँ, और शुद्ध भक्ति में बाद में शांत रस की बात आई, बाद में दास्य साख्य वात्सल्य की बात आई, बाद में मधुर की बात आई। मधुर भक्ति में भी एक द्वारका की और पत्नियों की भक्ति आई मधुर भक्ति में, और मधुर भक्ति में बाद में गोपियों की बात आई। गोपियों की बात आने पर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा आगे बादशाह, वो बादशाह थे रावण, बादशाह आगे कहो बात, और आगे चलो और आगे चलो। तो राधा रानी की बात आई, तो राधा रानी कृष्ण का प्रेम की बात आई, तो बादशाह आगे कहो बात, अभी प्रेम की बात आई राधा रानी। तो बाद में राधा रानी का सुनने बोला श्लोक, राधा रानी कृष्ण को राधा रानी कहती है, सवाल का जवाब करती है कि भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। तो राधा रानी कहती है कि पहले ही राग नयन भंग भेद, पहले ही दृष्टि में हमारे नयन मिले, राधा और कृष्ण के नयन मिले, पहले ही राग न, तो राग पैदा हुआ। राग का अर्थ है प्रेम, पहले ही राग नयन भंग भेद, बाद में क्या हुआ, पहले ही राग नयन भंग भेद नाशो रमण नाहम रमणी, वो और इतना प्रेम बढ़ा राधा और कृष्ण में, इतना प्रेम बढ़ा कि वो न रमण रहा, रमण करने वाले लीला, रमण मतलब घूमना नहीं, रमण मतलब ये सब रसिकों की बात है, ये रसिकों का रमण अलग है, नहीं रमण, रमण का अर्थ है, पची बाद में सिखाऊंगा रमण क्या है और रमणी क्या है। लेकिन न वो रमण रहा, कृष्णा कृष्ण रहा, न मैं रमणी रही, हम दोनों एक हो गए। तो बाद में क्या हुआ, नासो रमण नाहम रमणी, दोनों मन पेशल जाने, हम दोनों के हृदय मन घिस गए, पीस गए, पीसे पीस गए, और उनका रस बन के एक हो गया। वो रस क्या हो गया, एक हो गया, मतलब कि वो रमण है मैं रमणी हूँ, वो भेद ही नहीं रहा, वो भेद ही नहीं रहा, हम लोग, हम दोनों क्या हो गए, एक हो गए। तू ना रहे, मैं ना रहूं, और
एक प्राण दो दे,
और क्या हो जाए, एक दूसरे में
खो जाए।
इनको पता है भजन लता, भक्ति लता को भजन पता है, ये हमारे जमाने का फिल्मी भजन है। तू ना रहे, मैं ना रहूं, एक दूसरे में खो जाए। और दूसरा भजन है कि हम दोनों एक कमरे में हो और चारों खो जाए, फिर भी भजन है, लेकिन ये प्रेम की पराकाष्ठा है, वो लस्ट की पराकाष्ठा है, काम की पराकाष्ठा, लस्ट मतलब भौतिक काम, और प्रेम वही वैसा है लेकिन उससे उल्टा है। प्रेम लस्ट काम से प्रेम क्या है, उल्टा है। तो वहाँ भी यही चीज है कि भगवान में बोलते हैं ना, हम एक हो गए या मिल गए या ब्रह्म में मिल गए या तल्लीन हो गए या ब्रह्मनिष्ठ हो गए या उसमें मिल जाना, ऐसा कई आध्यात्मिक गुरु लोग बोलते हैं, है ना। तो ये है पहले ही राग नयन भंग भेद। तो ये श्लोक जब रामानंद राय ने गाया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका मुंह बंद कर दिया, बस बस अभी आगे मत बोलो, आगे मत बोलो, आगे बस छोड़ो, अभी अंदर रखो जो जो है, अभी बाहर मत निकालो इनको, ये सारा खजाना बस हो गया, चुप, उनका मुंह बंद कर दिया। तो ये पराकाष्ठा है, समझ गए, प्रेम की पराकाष्ठा। प्रेम प्रेम की पराकाष्ठा ये है कि प्रेम में, भगवत प्रेम में हृदय द्रवीपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, हृदय द्रव 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 बहता है, द्रव क्या कहता है, इसी तरह हृदय इतना बहता है, पिघल के क्या होता है, बहने लगता है। कितना बहता है, बस बहते बहने बहते रहता बहते रहता बहते रहता। तो उनका प्रेम का प्रेम दिखाता देता नहीं है, है ना। तो कैसे पहचानोगे कि ये भक्ति लता ने, भक्ति लता में इतना भाव है, तो कैसे पता चलेगा। तो आंसू रोंटे गला रुट जाना, वैवर्ण्य चेहरे का रंग बदल जाना, शरीर का रंग बदल जाना, ब्लू हो जाना, रेड हो जाना, तो ये आठ सात्विक भाव बोलते हैं उनको। तो जैसे आपको बुखार है वो कैसे पता चलेगा आपको कितना बुखार है, सिम्टम्स क्या है, है ना, गर्मी है ना, तो गर्मी थर्मोमीटर से माप सकते हैं। तो प्रेम कितना है वो हम कैसे मापेंगे, हाँ, और आठ सात्विक भाव एक पैदा होता है, कभी दो पैदा होते हैं, कभी तीन होते हैं, कभी चार होते हैं, कभी पांच होते हैं, तो कभी आठों एक साथ पैदा होते हैं। तो उनको बोलते हैं महाभाव, प्रेम की पराकाष्ठा, हाँ, और राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु के गुरु के गुरु माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी, ये तीन महाभाव के, माधवेंद्रपुरी आपको देंगे हम पुस्तक, आप सुनो, खीर चुराई थी वही। तो प्रेम की पराकाष्ठा, तो हम क्या बोल रहे थे कि महाभाव, तो आंख में आंसू निकलेंगे तो ऐसे ऐसे लता, भक्ति लता में आंसू ऐसे निकलेंगे, ऐसे नहीं, उनका स्क्वाट ऐसे पिचकारी लगनी चाहिए, आंसू की क्या होनी चाहिए, क्या निकल रहा है, पिचकारी होनी चाहिए। और रोटे खड़े होते तो एक नहीं दो नहीं, हाथ के नहीं पाँव के नहीं, सारे शरीर के एक साथ रोटे, और गड़ा रुक जाता तो बस आवाज ही नहीं निकलेगी, इतना। मतलब कि आठों सात्विक भाव की पराकाष्ठा, पूर्ण पराकाष्ठा एक साथ, तो वो है जैसे ज्वर ताव का सिम्टम्स टेम्परेचर से हमें पता चलता है, उसी तरह एक आठ सात्विक भाव पैदा होना, और हृदय का क्या होना, हृदय पिघलेगा नहीं लेकिन यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो ये क्या होगा, तो वो डोंग है, वो क्या है, डोंग समझते हो कि नहीं, है? नाटक है, नाटक। साथ में हृदय क्या होना चाहिए, द्रवीभूत होना चाहिए, और सात्विक, नयन गलद श्रद्धार या वदन गदगद हृदय गिरा पुलक निचित वपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्य युगायतम निमेशेन चक्षुषा प्रावृषायता। देखो ये प्रेम, प्रेम की परिक्षा जो महाभाव, तो आंखों में से आंसू कैसे निकलना चाहिए, प्रावृषायता, टॉरेंट ऑफ रेन, जैसे टॉरेंट ऑफ रेन नयनम गलोदा सुधा, आंसू कैसे निकलने चाहिए? टॉरेंट ऑफ रेन का मतलब मूसलधार बारिश, तो मूसलधार आंसू निकलने, ऐसे पिचकारी लगनी चाहिए आंखों में से आंसू की, क्या होनी चाहिए? महाभाव, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये आपकी आंखों में से पिचकारी एक दिन उड़ेगी, तो पराकाष्ठा रुक जाते हैं अभी यहाँ। लेकिन ये बहुत बड़ा लेक्चर है, ये 7 दिन का सप्ताह और हर रोज 4 घंटा मिनिमम, फिर भी अंत नहीं आएगा इसका।
हरे कृष्ण।